नमस्कार श्रोताओं, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहमाया नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नहमाया की पुस्तक को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है यरूशलेम की शहरपना का पुनर्निर्माण, दूसरा है ईश्वर द्वारा दिए गए कुछ नियमों तथा व्यवस्थाओं का पूर्वाभ्यास, और तीसरा है प्राचीन प्रथाओं एवं धर्म विधियों का जीर्णोद्धार। श्रोताओं, ये कहना अत्यंत आवश्यक है कि पुराने नियम की कोई भी पुस्तक परमेश्वर के कार्य के प्रति इतना समर्पित, त्यागपूर्ण और उत्साहपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत नहीं करती जैसे कि नहमाया की पुस्तक करती है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन की सत्यता के प्रति नहमाया के अनुराग का उदाहरण वर्तमान समय के संदर्भ में अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने कार्यों को करते हुए आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रियो, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हम एज्रा नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एक नई पुस्तक नहमिया की पुस्तक से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में प्रवेश करें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसे आप हमारे जीवन में बड़ी दया के द्वारा देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखने के लिए बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, विशेष करके हमारे उन श्रोता मित्रों को जो इस समय अपने जीवन में बहुत ही जरूरतमंद स्थिति में है, जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के आर्थिक दबाव में हैं, पारिवारिक दबाव में हैं। हमारी विनती है प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से बोले और बातचीत करें। इस समय हम आपके वचन के द्वारा आशीष को पाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबकी सहायता करें, विशेष करके हमारे उन मित्रों के लिए भी विनती है जो बीमार हैं। पिताजी, आप उन्हें भी छुएं और चंगाई प्रदान करें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आज के इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम एक नए पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, नहमिया की पुस्तक। नहमिया की पुस्तक उसके एक अध्याय के एक पद में प्रथम पुरुष संज्ञा से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुस्तक का लेखक नहमिया ही था। यदि एज्रा इसका लेखक था तो वह नहमिया के लेख से नकल उतार रहा था। एज्रा की पुस्तक की नाई इस पुस्तक में भी पत्रों, आदेशों, पंजिकाओं और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां विहित है। दोनों पुस्तकें एक ही लेखक ने लिखी है, संभवतः एज्रा ही इनका लेखक था। इब्रानी धर्मशास्त्र में ये दोनों पुस्तकें एक हैं। नहमिया एक साधारण मनुष्य था और एज्रा याजक था। एज्रा की पुस्तक का मुख्य विषय मंदिर का पुनः निर्माण है और नहमिया की पुस्तक में मुख्य विषय शहरपनाह का पुनः निर्माण है। एज्रा की पुस्तक में लौटने के बाद धार्मिक परिदृश्य दिखाया गया है, जबकि नहमिया की पुस्तक में राजनीतिक पक्ष दर्शाया गया है। एज्रा याजकों एवं शास्त्रियों का एक अति उत्तम प्रतिनिधि है, जबकि नहमिया व्यापारियों का कुलीन प्रतिनिधि है। सामर्थी फारसी राजा अर्थ क्षेत्र के दरबार में नहमिया को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, परंतु उसका मन परमेश्वर की प्रजा और यरूशलेम के निमित्त परमेश्वर की योजना में लगा हुआ था। मैं बार बार इस पुस्तक को पढ़ने पर बाध्य हो जाता हूँ, क्योंकि यह पुस्तक ऐसी ही है। मेरे मित्रों, कालक्रम के अनुसार यह पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तकों के अंत में आती है। जहाँ तक समय का संबंध है, हम इस पुस्तक में अंत समय पर आ जाते हैं, और जहाँ तक यहूदियों का संबंध है, पुराना नियम उनके इतिहास में इससे आगे नहीं जाता है। एज्रा की पुस्तक दूसरे इतिहास के बाद 70 वर्ष की कहानी सुनाती है। बंधुआई के 70 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात यहूदी स्वदेश लौटे। एज्रा का दल जरुबाबेल के दल के लगभग 75 वर्ष पश्चात आया था। नहमिया एज्रा के आगमन के 15 वर्ष पश्चात आया था, और ये आंकड़े अनुमानित हैं और बंधुआई के बाद इसराइल के इतिहास के चरणों को व्यक्त करते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि दानियल के 70 सप्ताह परिदृश्य में तार्किक रूप से समायोजित होते हैं। दानियल के ये 70 सप्ताह नहमिया के पुस्तक से आरंभ होते हैं, एज्रा से नहीं। यरूशलेम के पुनः निर्माण और पुनर्द्वार की आज्ञा निकालने से मसीह राजकुमार तक 7 सप्ताह होंगे। नहमिया की घटनाओं की पृष्ठभूमि है दानियल के पुस्तक 9 अध्याय उसके 25 पद में, वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। मेरे मित्रों, दानियल के 70 सप्ताहों की समस्या का संतोषजनक समाधान सर रॉबर्ट एंडरसन द्वारा सुझाया गया है। लिखता है, कुसरो की राजाज्ञा जो 536 ईस्वी पूर्व, जिसे हम एज्रा के पुस्तक 1 अध्याय 1-4 पद में पढ़ते हैं, अर्थशत्र की आज्ञा 445 ईस्वी वर्ष पूर्व, उसके राज्य का 20वां वर्ष है, और नहमिया 2 अध्याय 1-8 में देखते हैं 70 सप्ताहों का आरंभ, जो प्रथम 7 सप्ताहों का अंत है 397 ईस्वी पूर्व, जो हमें मलाकी में मिलता है। तब यह शब्द 32 बार आया है। तब शब्द 32 बार आया है। यह एक कम बोलने वाले कर्मठ व्यक्ति का बोध कराता है। इसे अपनी बाइबल में रेखांकित कर लें या चिन्हित कर लें और देखें कि यह साधारण महत्वहीन शब्द कैसा विशेष है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक के मुख्य पद हैं। पहला, नहमिया एक अध्याय उसका 4 पद। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। और दूसरा मुख्य पद है नहमिया 6 अध्याय उसका 3 पद, लिखा है, मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद हो। मेरे मित्रों, अब हम आते हैं इस पुस्तक के अध्याय 1 में और इसका विषय है यरूशलेम लौटने वाले कुछ लोगों के लिए नहमिया की प्रार्थना। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर की बुलाहट थी कि वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध गवाही दें, परंतु अधिकांश समय वे स्वयं ही मूर्ति पूजा में लीन हो गए। परमेश्वर ने उन्हें मूर्ति पूजा के स्रोत बेबीलोन को भेज दिया कि संजीवनी बूटी खाएं। वे मूर्ति पूजा का इनकार करते हुए स्वदेश लौटे, परंतु उनका पुनरुद्वार अपूर्ण था। जी हाँ, वे इस समय से लेकर और रोमी राज्य तक स्वतंत्र नहीं थे। नए नियम का आरंभ ही उनकी रोमी अधीनता से होता है। हम देखते हैं कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण में 3 मनुष्यों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जरुबाबेल एक प्रधान जिसने राजनीति का प्रतिनिधित्व किया, दूसरा था एज्रा एक याजक और तीसरा नहमिया जो एक साधारण मनुष्य था। राजा, याजक और भविष्यद्वक्ता शहरपनाह के पुनः निर्माण में और मंदिर के शोधन में सफल नहीं हुए थे, अतः परमेश्वर ने नहमिया को तैयार किया जिसे वह आयाजकीय वर्ग का कहता है। स्पष्ट कहूं तो आज इस अंतर की चर्चा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। याजक और साधारण मनुष्य दोनों एक दूसरे के अर्धभाग हैं। हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ हॉकी खेल रहा था। उनमें से एक ने कलीसिया के पदाधिकारी को खेल में आमंत्रित किया। वह नहीं जानता था कि मैं भी वहां आऊंगा। उसने मुझे देखा तो कहने लगा, ओह भाई साहब, आप भी यहां पर हैं। अब हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने तुरंत उससे हाथ मिलाया और कहा, सुनो मेरे भाई, मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूं। यदि आप कोसना चाहते हैं तो आप कोसे, परंतु एक बात जान लें कि मैं यहां रहूं या ना रहूं, परमेश्वर आपकी भाषा सुनता है। जी हाँ, मेरे सुनने या ना सुनने से अंतर नहीं पड़ेगा। आज पादरी और अन्य मनुष्य में एक झूठा अंतर उत्पन्न कर दिया गया है। परमेश्वर की संगति में रहना दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है, एक विश्वासी और अन्य विश्वासी। मेरे मित्रों, इसके पश्चात हम देखते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह बनाने वाला एक आम मनुष्य ही था। उसी ने मंदिर का शोधन भी किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर अयाजकीय मनुष्य को महान कार्य के लिए और दृढ़ नींव पर कार्य करने के लिए तैयार कर सकता है। आज भी पुनः निर्माण की आवश्यकता है। स्पष्ट बात तो यह है कि मैं परमेश्वर की बात जोह रहा हूं कि वह एक युवक को तैयार करे जो कि सेमिनरी अर्थात धर्म विज्ञान के विद्यालय में नहीं गया हो। मेरे प्रियो, मुझे बाइबल अध्ययन के विद्यार्थियों से कोई शिकायत नहीं है, परंतु परमेश्वर समय समय पर ऐसे मनुष्यों को भी उभारता है जो सेमिनरी की पृष्ठभूमि से नहीं है। जी हाँ, व्हाइट एल मूडी, संडे और विली ग्राहम आदि विशिष्ट जन हैं। हमें नहमिया जैसे मनुष्य की आवश्यकता है। जी हाँ, नहमिया सतर्कता से काम करने और कार्य एवं प्रार्थना करने में विश्वास रखता था। जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, काम करो, प्रार्थना करो, उस व्यक्ति के शब्द हैं। फारस में उसके पास बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। वह राजा का पिलाने हारा था। वह एक भला, सदाचारी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। वह फारस में ही रह सकता था, परंतु यदि वह वहां रुक जाता तो परमेश्वर की पुस्तक में उसका नाम नहीं आता। जी हाँ, हम उसके बारे में कभी नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति का परिचय पाते समय उसकी विशेषताओं पर भी ध्यान दें। तो आइए मैं आपका परिचय नहमिया, एक निष्ठावान मनुष्य से करवाता हूं। यरूशलेम में लौट आए यहूदियों के लिए नहमिया की चिंता इस अध्याय के प्रथम 7 अध्याय शहरपनाह के पुनरुद्वार से संबंधित है। शेष पुस्तक जागृति और सुधार से संबंधित है। पहला अध्याय नहमिया की प्रार्थना से आरंभ होता है। तो आइए हम पढ़ें नहमिया की पुस्तक एक अध्याय उसका एक और दो पद। नहमिया की पुस्तक एक अध्याय एक और दो पद लिखा हुआ है, हकल्याह के पुत्र नहमियाह के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। मित्रों ध्यान दीजिए, नहमिया ने बंधुआई से छूटे स्वदेश में वास कर रहे यहूदियों के बारे में पूछा। वह चाहता तो था कि स्वदेश लौट जाए, परंतु किसी कारणवश वह नहीं गया। उसने वहां नौकरी पकड़ी और मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ऐसो ही को काम में लेता है। देखिए, इस मनुष्य के मन में परमेश्वर के काम के लिए चिंता थी। यद्यपि वह सरकारी नौकरी पर था, परदेश में था, वह परमेश्वर के काम के लिए गहन चिंता में था। एक दिन जब वह महल में चहलकदमी कर रहा था, तब उसने यरूशलेम से आने वाले अपने एक भाई को देखा जो संभवतः संदेश लेकर ही महल में आ रहा था। नहमिया ने उसे रोककर पूछा, यरूशलेम का क्या हाल है? उसे यह जानकारी मिली जिसे हम नहमिया एक अध्याय के तीन पद में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। यह एक अच्छा परिदृश्य नहीं है। परमेश्वर का काम और उसके लोग कैसी दयनीय दशा में थे। यहूदियों की प्रतिष्ठा सम्मानित नहीं थी क्योंकि वे चूक गए थे, और परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। दुर्भाग्य से हम आज भी ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। जी हाँ, नहमिया यह समाचार सुनकर अत्यधिक चिंतित हो गया। वह इसके उत्तर में बहुत कुछ कह सकता था। वह कह सकता था, भाइयों यह तो बहुत बुरी बात है, सुनकर बहुत दुख हुआ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। वह अनेक धार्मिक एवं मसीही शब्दावलियों का उपयोग कर सकता था, काम में ला सकता था, परंतु संभवतः वह उनसे अनभिज्ञ था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि नहमिया चिंतित हो गया। आइए देखते हैं नहमिया की प्रार्थना। नहमिया एक अध्याय के चार पद में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। इस पद में मैं अनेक बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नहमिया अपने लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीन नहीं था, न ही वह दोष लगाने वाला आलोचक था। वह कह सकता था, अरे उन्हें ऐसा करना था, वैसा करना चाहिए था। जी नहीं, वह चिंता में पड़ गया। इज़रा की पुस्तक में क्या आपको स्मरण है कि वहां की दुर्दशा देखकर और सुनकर इज़रा की मनोदशा क्या थी? वह एक याजक था और बहुत चिंतित था। अब एक अयाजकीय अर्थात नहमिया याजक नहीं है, फिर भी एक ऐसा मनुष्य है जो चिंता में पड़ा हुआ है। आज मसीह का उद्देश्य संकट में है। मुझे तो शक है कि आलोचक और रुचि प्रकट करने वाले वास्तव में चिंता करते हैं या नहीं। यदि आपकी आलोचना के विषयों से आपका दिल नहीं दुखता है तो शांत हो जाएं। बातें तो बहुत हैं, परंतु आंसू बहुत कम है। आप परमेश्वर के संदेश वाहक नहीं हो सकते यदि संदेश आपका दिल न दुखाए। मेरे विचार में इज़रा तो वृद्ध था, परंतु नहमिया उससे छोटा था। इज़रा बंधुआई के समय एक बालक था और मेरे विचार में नहमिया वहां जन्मा था। यही कारण है कि इज़रा की पुस्तक के अध्ययन में मैंने बेबीलोन में रुक जाने वाले यहूदियों की आलोचना नहीं की थी। यद्यपि उनका वहां रुक जाना परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। वहां कुछ ईश्वर भक्त मनुष्य थे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। जी हाँ, आपको और मुझे उनका न्याय करने का अधिकार नहीं है। हमें अन्य विश्वासियों का न्याय करने में अत्यधिक सतर्क रहना है, यदि हमें परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान ना हो। वह बैठकर रोने लगा। नहमिया सरकारी नौकरी पर था, परंतु उसकी नौकरी उसे बैठकर रोने से रोक न सकी। ध्यान दीजिए, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। यह उन मनुष्यों का स्रोत और आसरा था। इज़रा ने भी यही किया और अब नहमिया ने रोना और विलाप करना आरंभ कर दिया। मेरे मित्रों, मैं एक बार फिर आपका ध्यान इस कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्वर्ग के परमेश्वर, ध्यान दीजिए, इज़रा, नहमिया और दानियल की पुस्तकों में यह अभिव्यक्ति काम में ली गई है। यह परमेश्वर की पदवी है जो इन तीन पुस्तकों में दर्शाई गई है। यरूशलेम के विनाश के बाद परमेश्वर को मंदिर से संबंधित नहीं दर्शाया जाता था। करूबों पर विराजमान परमेश्वर महिमा प्रस्थान कर चुकी थी। इसराइल के कुल चिन्ह ढाल पर लिखा था इकाबोध, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग लौट गया है। यही कारण है कि वह बंधुआई के बाद की पुस्तकों में स्वर्ग का परमेश्वर कहा गया है। इसके बाद वह तब तक प्रकट नहीं हुआ जब तक उसका मानवीय रूप बैतलहम में प्रकट नहीं हुआ। स्वर्गदूत ने कहा था, लूका रचित सुसमाचार 2:14 में, आकाश में परमेश्वर की महिमा, मसीह मानव देह में पृथ्वी पर आया था, वह एक दिन फिर से आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24:30 में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जी हाँ, मैं वह चिन्ह तो नहीं जानता, परंतु अनुमान लगाता हूँ कि वह परमेश्वर की शकीना महिमा होगी। जो भी है, नहमिया के युग में परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर कहलाता था। नहमिया भी उसे यही कहकर संबोधित करता है। यह एक महान प्रार्थना थी। अध्याय 9 में एक और प्रार्थना हम पाएंगे। नहमिया 1:5 उसके 5 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हम यहाँ भय योग्य शब्द पर ध्यान देंगे, क्योंकि इस शब्द को प्रायः गलत समझा जाता है और इसका उपयोग भी गलत ही किया जाता है। सच तो यह है कि पादरियों को रेवरेंड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ है भय योग्य। मैं संभवतः गलत हूँ, हमें कुछ लोगों को भय योग्य श्री कहना चाहिए। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि रेवरेंड शब्द केवल परमेश्वर के लिए काम में लेना चाहिए। किसी ने इसी विचार को इस प्रकार से व्यक्त किया है, मुझे श्रीमान कहो, मुझे मित्र कहो, मैं प्रेम से सुनूंगा, परंतु दुख मत दो मेरी आत्मा को, मुझे रेवरेंड कहना छोड़ दो। मेरे मित्रों, रेवरेंड शब्द उस युग में पादरियों के लिए काम में लिया जाता था जब समुदाय में उनका बड़ा मान सम्मान था। आज यह सच नहीं रह गया है। सच तो है कि कलीसिया में भी यह सच नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कलीसिया अलग है, परंतु अधिकांश कलीसियाओं में एक छोटा दल होता है जो प्रचारक को क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं। तथापि पुराने युग में जब प्रचारक को रेवरेंड कहते थे, तब वह शब्द सम्मान सूचक था, चाहे वह गलत नाम ही था। आज मैं किसी भी उद्धार से रहित मनुष्य को उसके संबोधन से पहचान सकता हूँ। वर्षों पूर्व मैं एक ड्राई क्लीनर के पास में जाता था और उसका युवा मालिक मुझे रेवरेंड कहता था। वहाँ प्रवेश करने और प्रस्थान करने के मध्य वह मुझे लगभग 20 बार रेवरेंड कह देता था। वह उद्धार से रहित मनुष्य था। वह मेरी गवाही पर तो लगभग ध्यान ही नहीं देता, परंतु वह मेरे लिए रेवरेंड पद नाम का उपयोग करना चाहता था। मित्रों, परमेश्वर ही रेवरेंड है, क्योंकि वह भय उत्पन्न करता है, परंतु वह उसकी आज्ञा मानने वालों और प्रेम करने वालों के साथ वाचा निभाता है और दया प्रकट करता है। वह दंड देने वाला परमेश्वर है तो अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। आइए हम पढ़ें नहमिया की पुस्तक 1:6 उसके 6 में लिखा है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। यहाँ नहमिया के शब्दों पर ध्यान दे, वह यह नहीं कहता है मैं उनके पापों को मान लेता हूँ, नहीं वह कहता है मैं इसराइलियों के पापों को जो हमने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। वह स्पष्ट कहता है मैं पापी हूँ और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है, इसराइल ने पाप किया है। हम कलीसिया में इस प्रकार का पाप अंगीकार या पाप स्वीकारन कितनी बार सुनते हैं? क्या आपने कभी सुना है? नहमिया ने अपनी प्रार्थना में पापों को स्वीकार किया। यहूदियों की चूक या गलती पाप के कारण थी। नहमिया ने कहा मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। यह मनुष्य की दंगी और फरीसी स्वभाव नहीं था। मेरे मित्रों, आज हम अपनी प्रार्थनाओं में कितनी बार अपने परिवार और अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं? हमारी कलीसिया की गलती को हम मान लेते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी नहमिया के समान प्रार्थना करें, अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के उन महान आशीषों को हम देख सकें। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही नहमिया के जीवन से उन भली बातों को सीखा है जो एक सरकारी नौकरी पर रहने के बावजूद भी अपने लोगों से प्रेम करता था, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था और अपने पापों का अंगीकार करता था। आइए आज हम भी इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और परमेश्वर के उन महान आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत।